आज के दिन ही है ना, मतलब तिथि के अनुसार 1 जनवरी 1937 को उनका तिरोभाव हुआ। और तिरोभाव से पहले उन्होंने क्या क्या अपने भक्तों को अंतिम संदेश दिए है ना, उनकी क्या मनोभावना थी, अपने शिष्यों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो बुक है परम पूज भक्ति विकास स्वामी महाराज, उन्होंने लिखा है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, उसका पार्ट 1 और चैप्टर 6 है वाइंडिंग अप हिज पास टाइम्स है ना, अपने जो लीला है प्रकट लीला उसको समेटना। तो उसका फर्स्ट हेडिंग है हिंट्स ऑफ डिपार्चर है ना, कि कैसे अलग अलग संकेतों से उनके अलग अलग प्रवचनों में जो उन्होंने वाक्य बोले हैं उससे हिंट मिलना चालू हो गया कि अभी तिरोभाव कुछ समय के बाद होने वाला है ना। तो उसमें महाराज बता रहे हैं कि उनकी तिरोभाव के कुछ साल पहले से वो कई लेक्चरों में ऐसे बोलते थे कि मेरे जीवन का कुछ समय बचा हुआ है, या मेरे जीवन का अंतिम समय है, या मेरे पास अभी बहुत कम समय बचा है ना, और मुझे नहीं पता है कि कब तक भगवान मुझे यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो इस तरह से वो कई चीज़ें अपने लेक्चर्स में रिपीट करते थे। और उन्होंने लिखा 1927 में कि जिस तरह से परीक्षित महाराज ने अपने अंतिम दिनों में लगातार 7 दिन तक भागवतम सुनी, उसी तरह मैं भी अपने अंतिम दिनों में भक्तों का संग चाहता हूँ। और जहाँ पर भगवान की कथा नहीं है, वहाँ कितने भी मित्र हो, कितने भी संबंधी हो, कितनी भी सुविधाजनक स्थिति हो, मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहूँगा है ना, क्योंकि जितनी भी सुविधाजनक स्थिति है, जितने मित्र हैं और जितने संबंधी हैं, अगर ये हरि कथा नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे लिए ये सब लोग क्या है, अनडिजायरेबल है ना, इनके संग की मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। फिर जैसे गौड़ी मठ में अलग अलग उत्सव होते थे, तो अन्नकूट उत्सव हुआ, और जब उस समय सब लोग भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे तो श्री श्री ठाकुर आए, उन्होंने बोला कि अभी सूर्य अस्त होने वाला है, और जो अभी आप प्रसाद ले रहे हैं स्वादिष्ट, भविष्य में ऐसे प्रसाद और अवसर नहीं मिलेगा है ना, क्योंकि ये जो उत्सव है और लंबे समय तक आयोजित नहीं किए जाएंगे है ना। फिर 1932 में श्री श्री ठाकुर अपने प्रवचनों में बता रहे थे कि कैसे गौड़ी मठ स्थापित हुआ, और गौड़ी मठ स्थापित होने से पहले कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना स्ट्रगल हुआ, और इवन गौड़ी मठ स्थापित होने के बाद जो भी बहुत सारा स्ट्रगल किया करना पड़ा, लेकिन वो दिव्य दिव्य शोक है ना, ट्रांसेंडेंटल ग्रीफ, उसमें वो शोक कर रहे हैं कि मैं जो श्री श्री राधा ब्रजमोहन और गौड़ी मठ है उनकी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाया है ना। तो ये आचार्यों का एक दिव्य स्तर पर एक शोक है ना, कि कितनी भी सेवा करें, कितनी भी सेवा करें, लेकिन भगवान की सेवा क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो जितनी वो सेवा करते हैं उतना उनको कम लगता है कि मैंने बहुत कम सेवा की है ना, मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ चला गया है ना। तो इस तरह से वो शोक कर रहे हैं। फिर अपने प्रवचनों में वो एक कई श्लोक बार बार उच्चारण करते थे है ना, अंतिम समय में जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं उसमें कई ऐसे श्लोक थे जिसमें भौतिक जगत की व्यर्थता और भौतिक जगत कितना क्षणिक है उसके बारे में बार बार उस चीज़ के बारे में चर्चा करते थे है ना। जैसे एक वो अवंती ब्राह्मण है जो 11वें स्कंद में आता है, उनके बारे में एक श्लोक है, वो श्लोक गा रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि भगवान हरि जिनके अंदर सभी देवी देवता उपस्थित हैं मुझसे प्रसन्न हो है ना। और अवंती ब्राह्मण के साथ क्या हुआ था कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे दूसरे व्यक्तियों के द्वारा बहुत ज़्यादा कष्ट मिला था है ना, बहुत ज़्यादा लोग परेशान कर रहे थे, बहुत अपमानित कर रहे थे है ना, तो उनको बहुत समय तक ऐसा अपमान और बहुत ज़्यादा कष्ट मिला। और जब उनको इस तरह से अपमान और कष्ट मिला तो उनके अंदर क्या आई, एक वैराग्य की भावना आ गई कि इस भौतिक जगत कैसा है। और ये वैराग्य की भावना आने से कि इनको जो वैराग्य है वो क्या है, एक नाव की तरह। अगर ये भौतिक जगत से, भौतिक जगत के भोग से अगर वैराग्य की भावना आ रही तो वो क्या है, एक नाव है। और नाव क्या है, नाव से इस भौतिक जगत को हम पार कर सकते हैं। तो इस तरह के श्लोक वो उच्चारण करते थे। फिर 1937 में डिसअपीयरेंस हुआ। 1935 में उन्होंने फिर प्रवचन में बताया कि हमारा जो जीवन है बहुत छोटा है, और अगर हमारे जीवन में अगर कोई सफलता होगी तो वो क्या होगी कि मैं लगातार कृष्ण कथा बोलते 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 अपना शरीर त्याग दूं, शरीर छोड़ दूं, है ना। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से प्रस्तुत किया कि लगातार 16 दिन उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन दिया, कई घंटे, एक दिन में कई घंटे लगातार 16 दिन श्रीमद् भागवतम के अलग अलग सिद्धांत हैं, है ना, उसकी शिक्षाएं हैं, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे कई 16 दिन लेक्चर्स दिए, है ना। और फिर अंतिम समय में वो अपने कुछ शिष्यों से बहुत नाराज थे। उन्होंने देखा कि शिष्यों के अंदर खाना सोना की प्रवृत्ति बढ़ती आ रही है और प्रचार करने की इच्छा नहीं है, है ना। मठ को एक खावा दावा दुकान बना दिया है, है ना, खाते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुकिंग करते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, खावा दावा दुकान बन चुका है। तो उनको बहुत मतलब प्रसन्न नहीं थे। और उन्होंने बोला कि अभी मेरे जो शिष्य हैं उनमें कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ती आ रही है, है ना, उनको प्रीचिंग में कोई रुचि नहीं है, प्रीचिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, है ना। और वो बोलते थे प्राण आछे जान से ही होते प्रचार, है ना, कि जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जान है, वही प्रचार कर सकता है, है ना। और उन्होंने देखा कि इस तरह से जब कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, है ना। तो महाराज यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं कि जो गुरु का अपने शिष्यों से नाराज होना है, ऐसा नहीं है कि गुरु ने अपने शिष्यों को रिजेक्ट कर दिया, है ना, कि उनको छोड़ दिया। गुरु का अपने शिष्यों से नाराज होना कैसा है कि उनको एक कंसर्न है, यानी उनको चिंता है कि शिष्य ऐसे क्यों कर रहे हैं और उनमें सुधार क्यों, है ना। जब कोई अगर महान भक्त हैं, अगर वो क्रोध करते भी हैं, है ना, इस तरह से अगर अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि एक भौतिक स्तर पर दूसरे व्यक्ति से द्वेष है, है ना, उनको एक दिव्य स्तर पर उनसे कंसर्न है कि उनमें कैसे सुधार हो, है ना। 1935 में कार्तिक में 150 से 200 भक्त की यात्रा हुआ, राधा कुंड पे सब आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर वहाँ पर प्रवचन देते थे, और वहाँ पर उनके एक गृहस्थ भक्त मिले। कौन थे गृहस्थ भक्त? अभय चरणारविंद दास, है ना। तो वो जो गृहस्थ भक्त हैं 1935 में राधा कुंड पर मिले, और उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त किया कि जो मेरे शिष्य हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर, है ना, अपने शरीर आराम से रहे, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, इससे मुझे, मैं बहुत चिंतित हूँ। और उन्होंने बोला कि आगुन ज्वलिबे, मतलब आगुन ज्वलिबे मतलब अग्नि जलने वाली है, अग्नि जल जाएगी। और उन्होंने बताया कि जब हम एक किराए के मकान में रहते थे उल्टा डिंगी रोड पर, और हम महीने में 200 या 300 रुपए कलेक्ट करते थे, तब सब अच्छा चल रहा था, है ना, तो हम सब प्रसन्न थे। जब से ये बाग बाजार में मार्बल मंदिर बना है, संगमरमर का मंदिर बना है, तब से सब लोगों के बीच में झगड़े चालू हो गए हैं कि कौन किसको कौन सा रूम मिलेगा, इसको कौन सा रूम मिलेगा, सब अपने रूम पर क्या है आधिपत्य जताना चाह रहे हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है कि मार्बल को निकाल दें दीवार से, इनको बेच दें और बुक्स को प्रिंट करवाएं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरह से उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त किया। फिर और आगे चल के राधा कुंड पर उन्होंने मठ की स्थापना किया, कुंज बिहारी मठ। हम लोग गए थे इस बार, याद है, तो कुंज बिहारी मठ है, उन्होंने 1935 में स्थापित किया। और 2 दिन के बाद उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर की पुष्प समाधि स्थापित किया, स्वानंद सुखदा कुंज, वहाँ भी गए थे हम, जो बंद था। राधा कुंड पर गए थे, याद है, अंदर से ऐसे निकलकर वहां गए थे। ठीक है, फिर उनका एक, फिर उन्होंने 21 जनवरी 1936 को उन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने जनरली अंतिम समय में जो लेक्चर उन्होंने दिए उसमें जो मेन थीम थी कि हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए भक्ति में, है ना। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, है ना। हिपोक्रेसी से बहुत उनको नफरत थी, है ना, बहुत कि हिपोक्रेसी मतलब क्या है कि हम दिखा रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशन पालन कर रहे हैं या हम बड़े भक्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो बार बार इस चीज़ पे प्रहार करते थे वो कि जो मटेरियली मोटिवेटेड सीडो डिवोटीज, है ना, जो वैष्णव धर्म के नाम पर, है ना, वैष्णव धर्म को खराब कर रहे हैं इस तरह से, है ना। तो बार बार उस चीज़ पे वो प्रहार करते थे। और वो एक उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति है जिसने मनुष्य की खोपड़ी स्कल वो लिया और उसमें पानी डाल के पीता था और अपने आप को बताता था कि मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से भी जाना विरक्त हूँ, जाना मेरे अंदर वैराग्य है, है ना। तो इस तरह से जो हिपोक्रेसी है वो नहीं होना चाहिए, है ना। और एक पहले इसमें उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति था और उसका नाम था मित्र। तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जप करते थे, है ना। जनरली जप कैसे जगह करते थे, जहाँ लोग आ नहीं सके। कभी कभी जो टॉयलेट है, शौचालय है, उसमें बैठ के जप करते थे कि वहाँ पे कोई आए नहीं, है ना, कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं है। तो एक उनको इमिटेट करने के लिए एक व्यक्ति आया और बगल में दूसरी जगह जाके वो जप करने लगा जोर जोर से, है ना। तो क्यों, जिससे मेरी नाम हो, प्रतिष्ठा हो कि देखो मैं भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसा महान भक्त हूँ, मेरे अंदर ही वैराग्य है। तो सब लोग आते थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से पूछते थे कि ये ऐसे जप कर रहे हैं और ये महान ऐसे। तो उन्होंने बोला कि वो चिल्लाने से बच्चा पैदा नहीं होता है, है ना, कि कोई चिल्ला रहा है तो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। बच्चे पैदा करने के लिए पहले शादी होती है, है ना, पति पत्नी संग करते हैं, फिर 9 महीने रुकना पड़ता है, उसके बाद बच्चा होता है, है ना। तो केवल वो चिल्ला रहा है वहाँ बैठ के तो ऐसे नहीं उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पहले गुरु की शरण लेनी होती है, गुरु का आश्रय होता है, दीक्षा होती है, फिर शुद्धिकरण होता है, उसके बाद शुद्ध नाम आता है, है ना। तो ऐसे हिपोक्रेसी दिखाने से बाहर से कि हम बहुत महान भक्त हैं, है ना। तो इस और उन्होंने बताया कि गिव अप डुप्लीसिटी, है ना, कपटता को छोड़ दो। जो हमने पहले डिस्कस किया था परसों कि सिंसियरिटी क्या होता है, सिंसियरिटी मतलब निष्कपट, है ना। और उन्होंने बोला कि आलस्य में अपना जीवन मत बिताओ, है ना, और महान भक्तों को अनुसरण करो, है ना, अनुकरण मत करो, उनकी नकल मत करो, उनके जो उपदेश हैं उनको पालन करो, है ना। फिर तो ये जो हिपोक्रेसी है वो उन्होंने वार्निंग दिया कि अच्छा है कि कोई इस संसार में एक पशु पक्षी कीड़ा या जितनी हजारों योनियां हैं वैसे जन्म ले ले, लेकिन हिपोक्रेट ना बने, है ना। हिपोक्रेट से अच्छा क्या है कि हमको एक पशु की योनि, कीड़े की योनि या जानवर की योनि मिल जाए, लेकिन पाखंड नहीं होना चाहिए। फिर 1936 में व्यास पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया शिवा सागन में। और उसके बाद उनको हृदय में थोड़ा सा दर्द प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे जो शरीर है धीरे धीरे वीक हो रहा था, लेकिन उनकी जो प्रीचिंग स्पिरिट था, प्रचार करने की भावना थी, वो बढ़ती जा रही थी और तेज हो रही थी, है ना। शिला प्रभुपाद हम देख सकते हैं, जिन्होंने वीडियोस देखे हैं कि अंतिम समय में शिला प्रभुपाद वृंदावन में थे तो पता चला कि भक्ति वेदांत मैनर में कुछ समस्या चल रही है, तो प्रभुपाद तुरंत लंदन जाना है। सबसे से बोलने के प्रभुपाद अभी हेल्थ सही नहीं है, आप रुकिए थोड़ा रिकवर हो जाइए फिर वहाँ पर जाइएगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं अभी जाओ, है ना। तो वो प्रीचिंग स्पिरिट थी वो बढ़ती जा रही थी। फिर कलकत्ता आए वो, और तो उनके जो प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य थे जिनका नाम था कुंजी बिहारी प्रभु, तो वो कई डॉक्टर्स को लेके आते थे ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो जब ट्रीटमेंट के लिए लेके आते थे तो वो डॉक्टर्स को प्रवचन, आधा एक घंटा तो डॉक्टर्स को प्रवचन होता था पहले इसके बारे में कि शरीर क्षणिक है ना, ऑलरेडी मृत्यु आने वाली है, अगर हरि कथा हमने नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया तो ऐसे शरीर का क्या फायदा है। तो शिष्य बोलते थे, ऐसे मजाक करते थे कि ये गुरु महाराज का ट्रीटमेंट करने आते हैं और इनका खुद का ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर जब उन्होंने देखा कि शिले सरस्वती ठाकुर के जो स्वास्थ्य और दिनों दिन और धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो उनके एक शिष्य हैं, उन्होंने पूछा कि आगे चल के आचार्य कौन बनेंगे, अगले आचार्य कौन होंगे। तो शिले सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आचार्य स्वयं प्रकाशित होते हैं, अपॉइंट नहीं होते हैं, ना सेल्फ मैनिफेस्ट होते हैं, तो अपॉइंट नहीं किया जाता। फिर कई लेक्चर्स में उन्होंने अंतिम समय में बताया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय में जगन्नाथपुरी में, है ना, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है और कृष्ण के बारे में चर्चा करना है, वैसे ही मैं करना चाहता हूँ और असत संग से दूर रहना चाहता हूँ, अभक्तों के संग से दूर रहना चाहता हूँ। फिर कुछ अंतिम उपदेशों में से ये उपदेश है, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव था, तो उसमें उन्होंने प्रवचन दिया, थोड़ा हम इसको पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा है। तो उसमें बता रहे हैं कि वन कैन नॉट बिकम और मेक अनदर ए वैष्णव, है ना, कोई वैष्णव बन नहीं सकता, ये दूसरों को बना नहीं सकता, कोई वैष्णव बन नहीं सकता। कहने का मतलब सब ऑलरेडी वैष्णव हैं, कंस्टिट्यूशनली सब वैष्णव हैं, कृष्ण और विष्णु के भक्त हैं, है ना, केवल उस चीज को क्या करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो हमारी ये नेचुरल कंडीशन है ना, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से, कोई ऐसे लोग बोलते ना ब्रेन वॉश, बाहर से बार बार सुन सुन के पालन कर करके हमें ये बताया जा रहा है कि भक्ति करना है, लेकिन क्या बता रहे, वन कैन नॉट बिकम ए वैष्णव, कोई वैष्णव बन नहीं सकता, ऑलरेडी वैष्णव है वो, और मेक अनदर ए वैष्णव, और दूसरों को भक्त बनाया नहीं जाता, जो भक्त बनने की उनकी जो प्रोसेस है उसमें उनकी हेल्प की जाती है। अगर हम सोचेंगे कि हम किसी को भक्त बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, हमें क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि देखो मैंने ये इसको भक्त बनाया, इतने सारे भक्त बना दिए मैंने, तो ये क्या है, हम भक्त नहीं, उसकी जो भगवान की तरफ जाने की यात्रा है उसमें हम केवल उसको असिस्ट कर रहे हैं कि जिससे वो भगवान और गुरु के चरणों में जा सके, है ना। ऑल लिविंग बींग्स इन द यूनिवर्स आर इंट्रिंसिकली वैष्णव्स, सारे जीव इस ब्रह्मांड में वैष्णव, दे सिंपली हैव टू रियलाइज इट, केवल उनको ये रियलाइज करना है ना। इट इज अ टास्क ऑफ द विश्व वैष्णव राज सभा टू असिस्ट सच रियलाइजेशन इन एवरी वे, तो जो भक्तों का जो समूह है, जो प्रचारक है, केवल उनको जिससे इस साक्षात्कार में पहुंच जाए कि वो वैष्णव है, इसमें उनकी सहायता करना, हेल्प करना, है ना। लोग अपने आप को अलग अलग चीजों में मेजर कर रहे हैं, किन किन चीजों में मेजर कर रहे हैं, कोई कास्टिज्म में कर रहा है, मैं इस जाति का हूं, कोई नेशनलिज्म में कर रहा है, है ना, अलग अलग चीजों में, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, इस चीज में मेजर कर रहा है ना। तो ये सब मेजरमेंट जो है, ये सब जो उपाधियां हैं, ये हर जगह से हट जानी चाहिए, ना कि बंगाल से, इंडिया से, पूरे संसार से ये इन उपाधियों को हटाना है। और बोल रहे हैं इफ नेसेसरी गो टू ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, अगर आवश्यकता है तो संसार के सारे चारे कोनों में जाओ और निर्जन भजन मत करो, है ना, कि केवल अपने उत्थान के लिए सोच रहे हैं, है ना, कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे भगवत धाम जाऊं, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो खुद के लिए हिंसा कर रहे हो और दूसरों को भी हिंसा कर रहे हो, है ना। वायलेंस टू वन सेल्फ एंड अदर्स अंडर द नेम ऑफ निर्जन भजन मस्ट बी स्टॉप्ड, है ना, कि अपने केवल उत्थान, अपने उत्थान के लिए बस सोच रहे हैं, तो ये क्या है, खुद के लिए वायलेंस है और दूसरों के लिए वायलेंस है ना। एवरी सिंगल डोर मस्ट बी नॉक्ड ऑन एटलीस्ट वंस, हर दरवाजा कम से कम उसके जीवन में एक बार खटखटाना है। हम जैसे प्रचार में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तुम सोचते हैं कि इतने इतना प्रयास कर रहे हैं, बुक्स नहीं जा रही, लेकिन पूरे जीवन में उसको एक बार तो अवसर मिले कि उसके दरवाजे पर कोई आया था। अब उसने उस मौके को लिया कि नहीं लिया वो अलग बात है। तो जो आचार्य बोल रहे हैं कि पूरे जीवन में एक बार उसका दरवाजा खटखटाना है, तो उसको पालन करने के लिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो जाए नहीं जाए वो हमारे लिए बोनस है, चली गई तो बोनस है, लेकिन हमने वो किया तो वो हमने आचार्यों की शिक्षाओं को पालन किया। तो और लंबा है इसमें, फिर आगे बाद में 1936 में उन्होंने कुछ भक्तों को इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया कि आप इंग्लैंड में जाकर प्रचार कीजिए और प्रयास कीजिए, क्योंकि अमेरिका भी जाइएगा वहाँ पर, है ना। और उनकी जो हेल्थ है और धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे, लेकिन उनको अपने शिष्यों की बहुत चिंता थी कि इंग्लैंड में प्रचार कैसे चल रहा है, वहाँ उनका आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। फिर सिलसिली ठाकुर पुरी में आए कलकत्ता से, और वहाँ पर एक बड़े ऑफिसर थे राधे श्याम पटनायक, उन्होंने बोला कि सिलसिली ठाकुर आपने संसार के लिए बहुत सारी चीज़ें किया लेकिन पुरी के लिए इतना नहीं किया है, तो आप कुछ समय और रुकिए यहाँ पर, पुरी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो करके जाइए, है ना। तो उन्होंने बोला कि एक भागवत सभा स्थापित होना चाहिए, है ना, जहाँ से भक्तिविनोद ठाकुर की जो पुस्तकें हैं उनके लेक्चर्स हैं उसका प्रचार हो। और उन्होंने बोला कि द टाइम ऑफ माई डिपार्चर हैज कम, वॉट कैन आई डू नाउ, है ना, कि मेरे जो डिपार्चर का जो टाइम है, तिरुभाव का समय है, अभी नज़दीक आ गया कि अभी मैं और कितना कर पाऊँगा। तो इस तरह से उन्होंने कई हिंट मिलना चालू हो गया था उनके शिष्यों को, है ना। और बार बार वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रत्याशा में तुम कुरु गोवर्धन पूर्णम, कि कब मैं गोवर्धन के पास जाऊंगा, गोवर्धन के पास में रह के वहाँ पर अपना भजन करूँगा। फिर उसके बाद उनको ये सॉन्ग बहुत पसंद था, श्री रूप मंजरी पद, है ना, श्री रूप मंजरी पद। अंतिम समय में उनके अलग अलग शिष्य हैं, वैष्णव सॉन्ग आते थे तो श्री रूप मंजरी पद। फिर उन्होंने बताया, ऑल ऑफ यू टेक टू सिंसियर हरि भजन, देर आर नॉट मैनी मोर डेज, है ना, कि आप सिंसियरिटी से हरि भजन को लीजिए और अभी बहुत दिन नहीं बचे हैं, है ना। तो इस तरह से कई लेक्चर्स में, पर्सनल कन्वर्सेशंस में, और अंतिम समय में गोवर्धन में जाके भजन करने से शिष्यों को ऐसा लग गया कि अभी उनका तिरोभाव होने वाला है। तो 6 दिसंबर 1936 तिरोभाव हुआ, 1 जनवरी 1937। तो 6 दिसंबर 1936 में तेज ठंड था, दिसंबर का महीना है, बहुत तेज ठंड था, और उस समय कोई अगर ऐसे जिनकी हेल्थ सही नहीं है उनको ट्रेन से जाने की सलाह नहीं दी जाती है ना। तो उन्होंने बताया कि मुझे अभी पुरी से कलकत्ता जाना है ना। तो उनके जो ड्राइवर थे वो एक ब्रह्मचारी कार चला रहे थे, उन्होंने हॉर्न बजाया और सब लोग कार को घेर के ऐसे खड़े हुए थे, है ना। तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था जदुमणि पटनायक, वो आए वहाँ पर और थोड़ी देर रुके और उन्होंने बात किया और अपने पुत्र को बोला कि देखो अभी सरस्वती ठाकुर का ये अंतिम दर्शन है, है ना, और मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा यहाँ पर वो पुरी में यहाँ पर वो आएंगे, है ना। तो पुत्र ने दंडवत प्रणाम किया और वहाँ से वो चले गए। फिर पुरी स्टेशन पे बहुत बहुत सारे लोग मिल रहे हैं उनसे, और वहाँ पे भी उन्होंने प्रवचन चालू है, जो भी मिलने आ रहा है उससे हरी कथा चालू है। फिर ट्रेन में कटक स्टेशन आया और कटक स्टेशन पर करीब 40 भक्तों का समूह आया और वहाँ पर स्टेशन पे कीर्तन हुआ, ट्रेन में कीर्तन हुआ और वहाँ पे भी उन्होंने प्रवचन दिया। ट्रेन रुक गई, कई बार ऐसा होता था कि सरस्वती ठाकुर, इस इंसिडेंट में भी है, पहले भी कई बार है कि जब पुरी से हावड़ा जाते थे कई बार जाना पड़ता था, तो अगर बीच में बहुत बड़ा समूह आया है तो ट्रेन ड्राइवर भी ट्रेन रोक देता था, पहले लेक्चर होगा उसके बाद ट्रेन चलेगी। फिर हावड़ा स्टेशन उतरे, हावड़ा स्टेशन पर बहुत सारे वहाँ भक्त आए थे, गौड़ी मठ ले गए उनको और वहाँ 7 दिसंबर को पहुँचे और वहाँ पे भी कई घंटों का उन्होंने लेक्चर दिया फिर सुबह। फिर 13 दिसंबर को उनके एक शिष्य हैं, उनका पहले तिरुभाव हो चुका था, उनका उन्होंने गुणगान किया। और इसके फिर 18 दिसंबर 1936 को उन्होंने अपने कुछ जो शिष्य हैं जो इंग्लैंड में और वहाँ प्रचार कर रहे थे उसके उनके बारे में उन्होंने पूछा। और जब उन्होंने जो वही हिपोक्रेसी है ना उसको फिर से कंडेम किया और फिर 18 दिसंबर के बाद वो बेड रिटर्न, मतलब केवल बिस्तर पे थे, फिर उठना जाना वो बंद हो गया। फिर उनको फीवर, थोड़ा सा फीवर आया, फिर कुंज बिहारी प्रभु ने कई डॉक्टर्स को बुलाया है ना, फिर उन डॉक्टर्स को उन्होंने फिर से उन्होंने बताया, हरी सेवा के बारे में बताया, शरीर की क्षणिकता के बारे में बताया है ना। और उन्होंने बोलते थे अपने शिष्य से, बोला कि आप मुझे क्यों डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं ना, ये बार बार डॉक्टर्स को ला के क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस सिंपली चैंट हरी नाम, दैट्स ऑल, हरी नाम जप कीजिए बस और क्या है ना। फिर 23 दिसंबर 1936 उन्होंने अंतिम अपना प्रवचन दिया है ना, बिस्तर पर लेटे हुए हैं और ये प्रवचन उनके शिष्यों ने नोट डाउन किया है ना, और बाद में ये प्रवचन कई मैगजीन्स में, कई बुक्स में इसको प्रकाशित किया गया है ना। और उस समय ऐसे रिकॉर्डिंग मशीन नहीं थी है ना, उस समय कुछ जब वो प्रवचन देते थे तो कुछ 2-3 शिष्य थे उनके, वो लिखते थे और जो जैसा वो जैसा बोल रहे हैं एज इट इज वो लिखे जा रहे हैं। और कई बार कोई प्रश्न पूछते थे बाद में, प्रवचन के बाद में, तो बोलते थे कि जो मेरे शिष्यों ने नोट्स लिखे हैं वो आप उसको देख लेना है ना। और कई बार ऐसे प्रश्न होते थे कि आपके प्रवचन में समझ में नहीं आया, तो बोले मेरे जो शिष्यों ने नोट्स लिखे हैं उसमें समझ आ जाएगा। फिर उनके जो अंतिम प्रवचन था तो वो बता रहे हैं, काफी लंबा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आई हैव अपसेट मैनी पर्सन्स माइंड, कि मैंने बहुत लोगों को नाराज किया। मैनी माइट हैव कंसिडर्ड मी देयर एनिमी, और कई लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं क्योंकि वो जो भी अपसंप्रदाय है या जो भी कहीं भी थोड़ी भी सिद्धांत में प्रॉब्लम आ रहा तुरंत उसको, इसीलिए उनका है ना रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वंत हारणे, कि जो रूपानुगा के विरुद्ध जो भी सिद्धांत है उसको ध्वंत हारणे, तुरंत कटिंग करते हैं है ना। तो कई लोगों ने मुझे दुश्मन समझा, बट बिकॉज आई वॉज ऑब्लाइज टू स्पीक द प्लेन ट्रूथ ऑफ सर्विस एंड डिवोशन टुवर्ड द एब्सोल्यूट गॉडहेड, लेकिन मैं ऑब्लाइज हूं, सत्य बोलना है और कुछ नहीं बोलना, केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बोलना है और कुछ चर्चा नहीं करना है, इसके लिए मैं ऑब्लाइज हूं है ना। और मैंने आप लोगों को इतना कष्ट दिया है जिससे एक दिन आप कृष्ण की तरफ मुड़ सकें है ना, और भक्ति में रत हो बिना किसी इच्छा के और पूरी तरह से अहेतु की अप्रतिहता भक्ति में लग सके, इसलिए मैंने आपको इतना परेशान किया है ना। और किसी ना किसी दिन आप इस चीज को समझेंगे है ना। फिर बता रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ जो रूप रघुनाथ हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी शिक्षाओं का प्रचार कीजिए है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जो भी रूपानुगा है, जो भी रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं उनके चरणों की धूल बनना है ना। इस जगत में किसी भी तरह बस समय निकाल दीजिए, है ना, बहुत कम समय है, इतना ज्यादा कोई समय है भी नहीं, केवल हरि भजन में प्रचार में अपना समय निकाल दीजिए। कितनी भी ज्यादा बहुत डेंजर्स को क्या बोलेंगे, कठिनाइयां, बहुत ज्यादा कठिनाइयां आए, बहुत लोग आपकी निंदा करें या बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट्स, लेकिन अपना हरि भजन कभी मत छोड़ना, है ना। और निराश मत होना कि संसार के बहुत सारे लोग भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे, इस ये देख के निराश मत होना, अपना भजन मत छोड़ना, है ना। हम प्रचार करते हैं, लोग बहुत कम लोग आते हैं, फिर जो लोग आते हैं उसमें से बहुत कम लोग सिंसियर बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम निराश हो रहे हैं क्या, ठीक है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड दैट मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट एक्सेप्ट टॉपिक्स ऑफ कृष्ण सेवा, है ना, इसमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। और फिर बता रहे हैं जैसे एक बैल होता है, बैल है ना, वृद्ध बैल, उसकी कभी कभी बलि चढ़ाई जाती है ना। वैदिक शास्त्रों में ऐसा है कि अगर कोई वृद्ध जानवर है उसकी बलि चढ़ाई जा सकती है ना। तो उसी तरह हमको अपने जो संकीर्तन यज्ञ है उसमें अपने आप की बलि चढ़ा देनी है ना। वी डोंट एस्पायर टू बी एनी काइंड ऑफ हीरोज ऑफ कर्मा एंड धर्म। फिर बता रहे हैं कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जो भी इच्छाएं हैं उसको आप सब मिलकर पूरा कीजिएगा, है ना। आप लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं कि जब ये साफ करेंगे तो बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस आएंगे, है ना। भक्ति का रास्ता क्या है, कांटों से भरा हुआ है ना, कांटों से। तो जब मान लीजिए कोई रास्ता है उसमें बहुत सारे कांटे हैं, है ना, तो रास्ते पर चल रहे हैं तो कांटों पर चलना होगा तो बहुत कठिनाई होगी, और कांटे को हटाना ही पड़ेगा हाथ से। तो जब कांटों को हाथ से हटाएंगे तो क्या होगा, खुद का हाथ भी उसमें डैमेज होगा, है ना। तो जब उस रास्ते पे चलेंगे तो चलने में परेशानी है, और जब कांटों को हटाएंगे तो उसमें परेशानी है, है ना। और वो एक प्रवचन में बताते हैं कि कांटों को जब हटाते हैं तो कांट में बहुत सारे बिच्छू भी बैठे हैं, बहुत सारे सांप भी हैं, तो अब जब उन कांटों को हटाएंगे तो बिच्छू और सांप काटने भी आएंगे, है ना। लेकिन जो भक्त है वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करेगा, है ना, वो कांटों को हटाएगा जिससे कांटे रास्ते से हट जाए, जिससे बाकी लोग अच्छी तरह से वहां उस पर चल पाए, है ना। और कांटों को हटाते समय जब ये विषैले जानवर डसेंगे, है ना, तो उनका भी ट्रीटमेंट करना है, उनको देख के भी ऐसा नहीं कि क्या होगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना। ऐसे प्रचारक नहीं सोचेगा, जो आचार्य है वो ऐसा नहीं सोचेंगे। तो जितनी भी इनकन्वीनियंस आ रही है उसको आप सहन करते जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद जो हमको प्राप्त होने वाला है ना, जहां जाने वाले उसका कोई कंपेयर नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जो हमको मिलने वाला है उसकी किसी भी संसार की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। और ऐसा नहीं मृत्यु के बाद मिलेगा, इस जीवन में भी उस चीज को आप अनुभव कर पाएंगे। फिर तो ये 23 जनवरी को उन्होंने बताया है, और भी बहुत काफ़ी लंबा है, और बहुत सारे फोन्स आना चालू हो गए मठ में, है ना, बहुत सारे टेलीग्राम चालू हो गए, लंदन से टेलीग्राम आना चालू हो गए, सब पूछ रहे थे हेल्थ कैसा है, है ना। फिर 24 दिसंबर को जब उन्होंने देखा कि मठ में से कीर्तन की आवाज़ नहीं आ रही, लेक्चर की आवाज़ नहीं आ रही, तो श्री श्री ठाकुर ने बोला कि कीर्तन और लेक्चर बंद क्यों हो गए, तुरंत फिर कीर्तन चालू हो गए, लेक्चर चालू हो गए। तो मैंने ठीक है, कभी हम जाएंगे कलकत्ता में, बहुत अच्छा मंदिर है, सुंदर मठ है। फिर 31 दिसंबर एक दिन पहले उनके लिए श्री रूप मंजरी पद फिर से गाया गया, और कुंज बिहारी प्रभु ने जो गा रहे थे उनको रोका, और उन्होंने बोला कि एक दूसरे भक्त हैं वो आप गाइए। तो सरस्वती ठाकुर ने बोला कि वो किस मेलोडियस गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं उससे नहीं है, वो सही सेवा भावना से गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जो पहले गा रहे थे वही कंटिन्यू करें, जो भी बाद में गा रहे हैं उनको गाने की आवश्यकता नहीं है। फिर फिर सुबह 31 दिसंबर को सुबह उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, उन्होंने बोला कि आप जीबीसी बनाइए 10-12 लोगों की, और जीबीसी के अंडर में पूरा अलग अलग जो मठ है उसका कार्य मैनेजमेंट चलना चाहिए, और कुंज बिहारी प्रभु हैं वो गौड़ी मठ के मैनेजर रहेंगे पूरे जीवन भर, है ना। और सब शिष्यों ने पूछा, तो उन्होंने पूछा श्री से ठाकुर ने एक शिष्य से कि आप सब में सबसे ज्यादा सिद्धांत कौन जानते हैं, आप सब लोगों में सिद्धांत में सबसे प्रवीण कौन है। तो सब लोगों ने उत्तर दिया कि अनंत वासुदेव प्रभु। तो श्री से ठाकुर ने बोला कि हाँ अनंत वासुदेव प्रभु हैं, और वो इस चीज को प्रचार हमेशा कंटिन्यू रखें, आप उन सबके संरक्षण में प्रचार कीजिएगा। फिर उन्होंने एक दूसरे शिष्य थे उनके सुंदरानंद विद्या विनोद, उनको बोला कि आप, वो वैष्णव डिक्शनरी बना रहे थे, वैष्णव मंजूषा, एक्चुअली उनका श्री सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि एक वैष्णव डिक्शनरी बने। वैष्णव डिक्शनरी क्या है कि उसमें हर शब्द को उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भक्ति है, सब भक्ति कर रहे हैं, दूसरे बोले हम ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट भक्ति क्या है, मोक्ष, मोक्ष की क्या परिभाषा है, संसार उसकी क्या परिभाषा है, माया, माया की क्या परिभाषा है। कई लोग बोलते हैं हम संसार में फंसे हुए हैं, क्या संसार एग्जिस्ट है, क्या उसकी क्या परिभाषा है, माया ये पैसा स्त्री तो मुंह माया है, लेकिन वास्तव में माया की क्या डेफिनेशन। तो वो चाहते थे कि सारे जो शब्द हैं उनको परिभाषित किए जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, जो मायावादी या सहजिया लोग अलग अलग ये शब्द यूज करते हैं, है ना, बोले आप में तो बहुत भाव है, बहुत भाव है भक्ति, तो भाव मतलब क्या, भाव की क्या डेफिनेशन। तो हर चीज की उन्होंने बोला कि हर चीज को परिभाषित करना। फिर उन्होंने अपना अंतिम मैसेज दिया, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट एंड अब्सेंट एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स, रिमेंबर दैट अवर सोल ड्यूटी एंड धर्म इज टू प्रोपेगेट सर्विस टू द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। तो आप सभी जो यहां उपस्थित हैं, यहाँ उपस्थित नहीं है, सब मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें, और हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म क्या है, भगवान और भक्तों की सेवा को बढ़ाना है, उनका प्रचार करना है, है ना। फिर 1 जनवरी 1937 तो अलग अलग जो ब्रह्मचारी हैं उनका शिफ्ट था कि इस समय वो उनको केयर करेंगे, इस समय वो केयर करेंगे, इस समय के ऐसे एक शिफ्ट था। तो सुबह 5:20 पर एक ब्रह्मचारी थे, प्रणवानंद ब्रह्मचारी, है ना, तो उनका टाइम पूरा हो रहा था, और उन्होंने जो कृष्णानंद ब्रह्मचारी हैं उनको पंखा और जो ऑक्सीजन फनल था वो दे दिया। तो श्री से ठाकुर उठे और उन्होंने बोला कि कौन है यहाँ पर, कौन है। तो उन्होंने बोला प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने बोला कि प्रभुपाद मैं हूँ यहाँ पर, है ना। तो सरस्वती ठाकुर बोले कि ओ प्रणवानंद प्रभु, अच्छा आप हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो सरस्वती ठाकुर ने बोला कि ऐसे अंतिम शब्द बोले, ओ कृष्ण कृष्ण। और जैसे ही प्रणवानंद ब्रह्मचारी रूम के बाहर गए तो कृष्णानंद ब्रह्मचारी ने उनको बुलाया और बोला कि प्रणव कम क्विकली, इट्स ओवर, है ना, कि आप जल्दी आइए, अभी मतलब 13वां हो गया। तो 62 years and 10 months ऑफ मैनिफेस्टिंग अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू श्री श्री राधा कृष्णा इन दिस वर्ल्ड, श्री वार्ष भानवी दैतदास रिजॉइंड देम इन द आवर ऑफ निशांत लीला, है ना। तो 62 years and 10 months की जो अपनी जो प्रकट लीला है वो उन्होंने समाप्त किया, और शुरू के मतलब निशांत सूर्योदय के पहले के जो समय है निशांत उसको बोलते हैं, निशांत लीला में उन्होंने प्रवेश किया, है ना। और सारे जो मठ में जितनी भी घड़ी थी सारी घड़ियां रुक गई, और सब जगह से रोने की और ऐसे वेलिंग एंड क्राइंग हर जगह से आवाज़ आना चालू हुआ, है ना। सारे शिष्य इकट्ठा हो गए और उन सब बोल रहे हैं ओ प्रभुपाद प्रभुपाद। तो वैसे सूर्योदय हुआ था क्योंकि तो सुबह 5:30 साढ़े 5 बजे सूर्योदय, तो महाराज लिख रहे हैं कि सूर्य का उदय हुआ लेकिन जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है उसका सूर्य अस्त हो गया। फिर उनके जो अंतिम संस्कार है उसकी तैयारियां चालू हुई, तो कुंज बिहारी प्रभु ने अपने जो गुरु महाराज हैं उनको जो चंदन का पानी है उससे, चंदन के पानी से शरीर को क्लीन किया और 12 जगह तिलक लगाया, नए कपड़े परिधान पहनाया और माला फूल और चंदन का जो पेस्ट है उससे अलंकृत किया और उनको जो मठ में जो डीटीज हैं उनके सामने उनको लाया गया, जो उन्होंने जितने कई सालों तक जिन डीटीज का सेवा किया था उनके सामने अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। फिर मठ से जो मठ था बाग बाजार में, वहाँ से सियालदह स्टेशन पर, सियालदह स्टेशन का जो दूरी है 2 मील है, करीब 1.5 या 2 मील है, तो उनको शिष्य कंधे पर मठ से सियालदह स्टेशन लेके आए और बहुत भीड़ थी, है ना, सब दर्शन लेना चाह रहे थे। और फिर सियालदह स्टेशन पर ट्रेन, लोग ट्रेन है उसमें 200 भक्त रवाना हुए साथ में, और एक बीच में स्टेशन आता है राणा घाट, वहाँ पर ट्रेन थोड़ी देर रुकी और वहाँ पर भी उन्होंने सब लोगों ने दर्शन लिए। और फिर वो कृष्णा नगर आए, फिर कृष्णा नगर से स्वरूपगंज हम गए थे, स्वरूपगंज कृष्णा नगर से स्वरूपगंज आए बस में, बस की छत पर शिष्य के देवी शरीर को लाया गया। एक्चुअली उससे पहले एक शिष्य है, उनके शिष्य के स्वप्न में ऐसा आया था कि आप बहुत सारा जो लाइन है चूना है उसको मायापुर ले जाइए, अभी तिरुभाव से पहले कि आप बहुत सारे चूना वहाँ पे ले जाइए। तो वो समझ नहीं पाए कि ऐसा मिस्टीरियस ये क्यों है कि अब मायापुर बुला रहे हैं, चूना लेके जाओ। तो उसे से चूना लेके मायापुर पहुँच गए थे और पूरा पर्पज़ क्या था कि इससे समाधि बनना था तो समाधि में उसकी आवश्यकता थी, तो उन शिष्य को पहले से इंडिकेशन मिल गया था। फिर वो स्वरूपगंज से उन्होंने नाव से पार किया तो मायापुर पहुंचे। फिर मायापुर पहुंचकर अलग अलग योगपीठ, श्रीवास आंगन, है ना, हम सब गए थे वहाँ दर्शन के लिए ले जाया गया। और बाद में रात्रि हो गया तो जहाँ उनकी समाधि बनना था तो सारे शिष्य जो गड्ढा है उसको खोदना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, है ना। फिर अगले दिन फिर से श्री रूप मंजरी पथ गाना प्रारंभ हुआ, यशोमती नंदन उनके जो फेवरेट सॉन्ग्स थे वो सब उन्होंने गाए उनके शिष्यों ने, और समाधि तैयार किया गया। फिर समाधि जो एक पूरा मार्बल का वो था प्लेटफॉर्म था, उनके दिव्य शरीर को रखा गया, फिर से जो नए वस्त्र हैं और फूल हैं सब अर्पण किए गए, है ना, इंसेंस इत्र है सब, और चैतन्य चरितामृत से पाठ किया गया, जो हरिदास ठाकुर का जब तिरोहा होता है तो उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या क्या बताते हैं तो उसका पाठ किया गया। और फिर जय अनिलो प्रेम धन वो गीत गाया गया, है ना, और उसके बाद पूरा समाधि पूरा उनका बन गया। तो श्रील प्रभुपाद उनकी जो तिरोभा है उसको सारांश में बोलते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर केम इन दिस वर्ल्ड टू एग्जीक्यूट द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर आए चैतन्य महाप्रभु का मिशन को फैलाने के लिए। सो ही एग्जीक्यूटेड इट, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड ही लेफ्ट दिस प्लेस, और जब जरूरत था तो उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया, एंड वेंट टू द अनदर प्लेस टू डू द सेम बिजनेस, और आगे दूसरी जगह गए और दूसरी जगह उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार उसको कंटिन्यू रखा, है ना। तो महान आचार्यों का जो तिरोभाव है, है ना, वो एक उस दिन प्रसन्नता भी है और दुख भी है। प्रसन्नता इस बात का है कि हम बोलते हैं ओम लित्य लीला प्रविष्ट, कि वो भगवान के धाम गए और भगवान के धाम में फिर सेवा प्रारंभ हो गई, लेकिन जो बद्ध जीवों को उनका संग मिलना चाहिए, अभी उस संग से क्या है, वंचित है, है ना। तो दुख का बात भी है, लेकिन उनका तिरोभाव हुआ है, लेकिन अभी भी अगर हम चाहें तो उनका तिरोभाव नहीं हो सकता है अगर उनकी शिक्षाओं को हम जीवंत करें, अगर उनकी शिक्षाओं को पढ़ें और उनकी शिक्षाओं को जीवंत करें और उसके अनुसार प्रचार करें। तो आज भी भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर शिल प्रभुपाद आज भी उपस्थित है ना। तो जो हम उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो हम फॉलोअर बनना चाह रहे हैं, तो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है ना कि उनकी शिक्षाओं को समझें, पढ़ें, आत्मसात करें और उसका प्रचार करें। तब हम एक्चुअली उनकी सेवा कर रहे हैं ना, शिल प्रभुपाद शिल सरस्वती ठाकुर उनकी सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पुत्र है, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा है और सब सारे गुण हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग सोचेंगे कि इसके पिताजी कौन है ना, इसके पिता कौन, किन्होंने सिखाया इसको, है पिता से मिलने के, पिता का गुणगान होगा एक्चुअली, करेक्ट। तो अगर उनके जो फॉलोअर्स हैं अपने गुरु की शिक्षाओं को पढ़ते हैं और पालन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो लोग सोचेंगे किन्होंने बताया। जब ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ है, वृंदावन ऐसे लोगों के लिए है, और इतने सारे जो हमने अभी 3-4 दिन में सुना, और जब किसी भक्त के जीवन में देखते हैं कि उनका पालन कर रहा है, तो हमको प्रेरणा मिलती है कि यस, है ना, मुझे भी सीखना है, मुझे भी पालन करना है ना। तो आचार्यों की और आचार्यों का हम गुणगान करेंगे, हम बोलते हैं ना एवे जस घुसिक त्रिभुवन, है ना, कि आचार्यों का जो गुरु है उनका जो त्रिभुवन है हर जगह गुणगान हो। इस शिष्य की इच्छा क्या है कि तीनों भवनों में गुरु का गुणगान हो। तो गुरु का गुणगान कैसे होगा, तो पहले तो हमको गुरु की शिक्षा पता होनी चाहिए, फिर उसका पालन होना चाहिए, फिर उसका प्रचार होना चाहिए, तभी तो गुरु का गुणगान होगा, है ना। तो अगर हम इस तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं, तो आज भी भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर उपस्थित हैं। ऐसे श्री प्रभुपाद कहते थे ना कि मैं कभी अकेला नहीं था न्यूयॉर्क में, हमेशा मैं अपने गुरु महाराज के साथ में था, है ना। और श्री प्रभुपाद एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर हैं उनके तिरुवा में बोलते हैं कि जो पिता है उनसे भी ज़्यादा स्नेह कौन करते हैं, दादाजी करते हैं, है ना। तो अपने शिष्यों को वो बता रहे हैं कि पिता से भी ज़्यादा स्नेह कौन करता है, ग्रैंडफादर करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जितना मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, उससे ज़्यादा भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर आपसे स्नेह करते हैं, है ना। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, हम मोबिलाइज हैं, रेडी हैं, है ना, इसलिए हमको समझना है और उसका प्रचार करना है। और जैसे शिल सेठ ठाकुर बोलते थे कि इसी जीवन को हमको अपना अंतिम जीवन बनाना है इस भौतिक जगत में, है ना, और जन्म नहीं लेने पड़े, है ना। तो इस तरह से प्रयास करना है, भरसक प्रयास करना है कि ये अंतिम जीवन, है ना, और मृत्यु के समय पछताना नहीं पड़े कि मैं थोड़ा और सीरियस हो जाता, सिंसियर हो जाता और समझ लेता, है ना। मृत्यु के समय ऐसा नहीं हो कि यार मैंने इतना अच्छा अवसर था और मैंने छोड़ दिया, ऐसे मजाक में दिन निकाल दिए, है ना। तो हमको पछताना नहीं पड़े, क्योंकि उस समय फिर कुछ रहेगा नहीं, फिर तो अंतिम अगला जीवन मिलेगा। और अगले जीवन में इस परंपरा में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत सारे पाप पुण्य भी हैं, कुछ अपराध भी हैं, तो फिर हमको लेमेंट ना हो उस समय कि मैं सीरियस हो जाता उस समय। तो आज का दिन वही है कि तिरोभाव हुआ है, लेकिन आज भी आचार्य प्रकट हो सकते हैं अगर हम उसको सीरियसली बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। और उनकी सेवा करने से हमारा ऑटोमेटिकली हमारा उद्धार हो जाएगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। प्रभुपाद ऐसे कई बार लेक्चर से बोलते हैं, जब प्रभुपाद के एक सन्यासी शिष्य हैं अच्युतानंद स्वामी, उन्होंने बुक निकाली वैष्णव सॉन्ग पर, तो प्रभुपाद बोले कि आचार्यों का गुणगान करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। कृष्ण के गुणगान करने से भी श्रेष्ठ है आचार्यों का गुणगान, है ना, क्योंकि कृष्ण ने क्या शिक्षा दिया उसको प्रैक्टिकल जीवन में जो देखना है, क्या शिक्षा है, वो हम आचार्यों के जीवन से ही देख सकते हैं, है ना। और जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि उनकी जो बायोग्राफी है सरस्वती जयश्री, उसमें शिष्य बार बार बोल रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं जानता हो, केवल सरस्वती ठाकुर का जीवन ही उसने पता है, उससे वो शास्त्र सब कुछ शास्त्र सीख जाएगा कि भक्ति क्या होती है, प्रचार क्या होता है, सेवा क्या होती है, सब कुछ वो उसे समझ जाएगा, है ना। तो एक कृपावश, और सरस्वती ठाकुर कौन है, नयन मणि मंजरी है, राधा रानी की दृष्टि है, दृष्टि के पर्सोनिफाइड फॉर्म। तो राधा रानी की दृष्टि में क्या है, सेवा है, और सेवा कैसे होती है वो सरस्वती ठाकुर से, है ना। लोग बहुत राधे राधे, है ना, राधे राधे बोलते हैं, है ना, तो राधा रानी हमारे गुरु हैं, लेकिन राधा रानी की जो दृष्टि है वो तो समझो पहले, उनकी दृष्टि में जो सेवा भाव है वो तो समझिए, है ना। तो सरस्वती ठाकुर ने बताया, हरे कृष्णा। जैसे कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% लीनियंट हूँ, है ना। तो अभी परिस्थिति बदल गई है, तो जो प्रभुपाद जी के जो सन्यासी शिष्य हैं वो और लीनियंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना। और यही है ना प्रश्न, है ना। तो अभी 10% भी बहुत भारी लग रहा है ना। प्रभुपाद ने क्या बोला कि मेरे बुक्स का कितने कितने समय के लिए है, 10,000 साल तक के लिए। तो 10,000 साल तो कोई चेंज नहीं हो सकता, 10,000 साल के बाद चेंज करना है तो कर सकते हैं। और 10,000 साल तक ही चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलेगा, गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के 10,000 साल तक गोल्डन एज। तो जिन्होंने पूछा है, या कई लोगों का ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि प्रभुपाद के समय से भी टाइम चेंज हुआ है तो हम और लीनियंट हो जाएगा, तो प्रभुपाद बोले कि ये मेरी लॉ बुक्स हैं 10,000 साल तक रहेंगी, तो कोई लीनियंसी नहीं, जो प्रभुपाद ने बोला है वैसा पालन करना। और कोई प्रश्न? और एक्चुअली अगर हम लॉजिकली देखें, अगर हम लॉजिक से चलें कि प्रभुपाद ने जिस परिस्थिति में प्रचार किया हिप्पियों के बीच में, वो परिस्थिति तो आज भी इंडिया में नहीं आई है। जो हिप्पियों का डिग्रेडेशन था वहां पर, इतना डिग्रेडेशन तो अभी भी इंडिया में इतना नहीं है। तो जब हिप्पियों के बीच में प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हम बोल रहे हैं कि अभी भारत में स्थिति बदल गई है, भारत तो अभी हिप्पी तक पहुंचा नहीं है, तो उसमें कैसे ढील बरत सकते हैं, कैसे लीनियंट हो सकते हैं। लोग बोलते हैं, अरे है ना, प्रभुपाद बोले ना कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन।